नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण। नीट प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए और 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 40 मिनट तक चली बैठक के दौरान ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की गई। इसके पूर्व कल प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की थी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा की थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, एआरवाई न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
इस पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठी और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित चैनलों के 6,30,00,000 से अधिक दर्शक हैं। सरकार ने हमले पर BBC की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत की BBC प्रमुख को देश की भावनाओं से अवगत कराया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए BBC को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है और आगे विदेश मंत्रालय द्वारा BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। श्री जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बयान जिम्मेदारी से पूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आतंकियों के खिलाफ कब और कैसे जवाब देना है।
प्रधानमंत्री जी, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब है कि बहुत दूर की बात वो सोच कर बोलते हैं। कुछ न कुछ तो होने वाला है, किस तरीके से होगा, कैसा होगा, ये अभी बहुत ही गोपनीय बातें हो सकती है। लेकिन इस देश के सुख चैन को छीनने का जिसने प्रयास किया है, शांति का माहौल भंग करने का जिसने प्रयास किया है और धर्म पूछ करके निर्मम हत्या करने का प्रयास किया है, उसको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा और धरती के अंदर से निकाल के उसको फिर वहीं पहुंचाया जाएगा जो गलती उसने किया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता अपनी टिप्पणी से देश को बदनाम कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपकी पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सुधार मैया से कोई पूछताछ की गई?
कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल।
ये ठीक नहीं है, इस पूरे एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में कई जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण और मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी को वस्त्र कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया।
श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती जेसी सुशील मोदी, श्रीमती निर्मला देवी वस्त्र कला,
कला, समाज सेवा, जनहित कार्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार तथा उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद और लोक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अन्य कई हस्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रमुख पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डी नागेश्वर रेड्डी हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में प्रख्यात संपादक और प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, सिने अभिनेता अनंत नाग, नंदमूरी बालकृष्ण और अजित कुमार, भरतनाट्यम नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पीआर सृजेश शामिल हैं। गोवा के 100 वर्ष स्वतंत्रता सेनानी लिबिया लोबो सरदेसाई, 96 वर्ष चमड़े की कठपुतली कलाकार विमब्बा डोडाबलप्पा सिल्केथारा और महाराष्ट्र में 400 हेक्टेयर जंगल का संरक्षण करने वाले चैतराम देवचंद पवार जैसे कई गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति पर विचार किया गया। श्री मांझी ने कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में 225 सीटों की जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जून में एनडीए नेताओं की बैठक में सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि परिसीमन में बिहार की जनसंख्या के अनुरूप लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। श्री कुशवाहा ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर पार्टी द्वारा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 25 मई को शाहबाद और 8 जून को मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि बगहा में आयोजित पार्टी के राजनीतिक मंथन शिविर में परिसीमन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए।
यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत अभी दो जगह तारीख तय हुई है, एक तो 25 मई को शाहबाद के इलाका में और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य में जाति की नहीं बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चुनाव में महागठबंधन को करारा जवाब देगी।
चुनाव अपने नियत समय पर होगा। जनता लोकतंत्र की धरती पर पूरे लोकतंत्र की रक्षा के लिए मन मिजाज बना के बैठी है। अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी, जमात की राजनीति कर चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। महागठबंधन अपने कर्मों से अपने भविष्य को खुद तय कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में ही ताड़ी व्यवसाय पर रोक लगी थी और अब राजद नेता तेजस्वी प्रसाद इस पर राजनीति कर रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि नीरा उत्पादन के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है।
लालू जी का परिवार कानून बनाकर पासी समाज को लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे, यही लोग बैठे हुए थे सरकार में ना। हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि नशाबंदी के कानून जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उस पर कार्रवाई होता रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था किया है कि जो नीरा उद्योग है उसको पूर्ण रूप से हम बढ़ाने का काम करें। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से नीरा पर उद्योग लगाने का काम किया जा रहा है।
नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने आज मुख्य सरगना की रिमांड की आर्थिक अपराध इकाई की आग्रह को मंजूर कर लिया। इसके बाद संजीव मुखिया को दो दिन के रिमांड पर ईओयू को सौंप दिया गया है। भारतीय हज समिति ने इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अल्पसंख्यक मंत्रालय के हज सुविधा ऐप 2.0 के प्रयोग की अपील की है। समिति ने कहा है कि सरकार का हज सुविधा ऐप 2.0 अत्यंत उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से हाजियों को पवित्र यात्रा के दौरान जरूरी सूचना प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी। समिति ने ऐप डाउनलोड करने और इसका इस्तेमाल सीखने की सलाह दी है। गौरतलब है कि इस वर्ष राज्य से 2383 हज यात्री जाएंगे। हज यात्रा के लिए 2 मई को गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहला जत्था रवाना होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आंधी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, कैमूर, बांका, जमुई और रोहतास समेत 25 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित कई जिलों में गरज और तेज हवा के साथ तेज बारिश दर्ज की गई है। हमारे मधुबनी संवाददाता ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में बारिश से जलजमाव की स्थिति बन गई। वहीं दरभंगा जिले के विभिन्न भागों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने परामर्श जारी कर कहा है कि बारिश के दौरान लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर खुले में ना रहें और वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थानों में ही शरण लें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारावगी ने कहा है कि विभागीय कार्यों के नियमित निरीक्षण से कार्य प्रणाली में सुधार होता है। श्री सारावगी ने आज पटना में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। उन्होंने DCLR से कोर्ट लगाकर मामलों का निपटारा कर रिपोर्ट ऑनलाइन करने को कहा है। श्री सरावगी ने कहा कि इससे आम लोगों की परेशानी कम होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जंक्शन के पास बन रहे भूमिगत पैदल यात्री मार्ग सबवे का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने सबवे के बचे हुए कार्य को जल्द पूरा कर इसे शुरू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ पर गांधी मैदान से NIT मोड़ तक निर्माणाधीन डबल डेकर पुल का भी निरीक्षण किया। इस पुल के शुरू हो जाने से अशोक राजपथ पर आवागमन सुगम हो जाएगा। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय 54वां क्षेत्रीय खेल समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान घुमंतू परिवार के बच्चों को सड़क किनारे कचरा चुनते देख उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखने के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 52 अपराधियों को भारी मात्रा में शराब और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण। नीट प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए 2 और दिनों के लिए रिमांड पर लिया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।